पर रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
अर्पा रेडियो स्टूडियो में आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट महिला है, महाराज पंडित बिरजू महाराज जी की सुपुत्री ममता महाराज जी। पिछले दिनों बिलासपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक वर्कशॉप के लिए वो यहाँ आई और हमने उनसे एक लंबी बातचीत की, उनके बचपन के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, उनके भाई बहनों के बारे में। वो अब उस संसार को, उस विरासत को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगी हैं, ये सारी बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं ममता महाराज जी का। ममता दीदी, आप इतने प्रसिद्ध व्यक्ति की बेटी हैं, जहाँ भी जाती होंगी आपको लोग इसी रूप में करते होंगे कि आप पंडित जी की, महाराज जी की बेटी हैं। लेकिन बेटी होने के साथ साथ आपकी अपनी भी एक शख्सियत है और वो शख्सियत बनाने के लिए आपको बचपन से बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो हम पहले तो जानना चाहेंगे आपके बचपन की बातें कि आपने कब से शुरू किया, कथक के प्रति आपका लगाव घर के माहौल के कारण हुआ या कैसे आपके मन में इच्छा जागृत हुई, कब से आप इस फील्ड से जुड़े?
हाँ जरूर, ये बहुत ही खूबसूरत आपने क्वेश्चन किया है। बचपन एग्जैक्टली हमारा कनेक्शन डांस का कनेक्शन ही बचपन से ही है, क्योंकि खानदानी चला आ रहा है, सेवन्थ जनरेशन मेरे पिताजी है
जी।
और मैं अब एट कह सकती हूँ कि मैं अब एट्थ जनरेशन हूँ, अब नाइन्थ जनरेशन शुरू हो गया है
जी जी।
तो महाराज जी, जब मैं, मेरी पैदाइशी एक्चुअली मेरी माता सुनी रोड दिल्ली में हुई थी घर में, और उसके बाद भाटिया कला केंद्र जो श्रीराम भाटिया कला केंद्र कहलाता है, वहाँ मैं पिताजी को जॉब मिला था, तो वहाँ पे वो गुरु पद में थे। और वहीं पे क्योंकि हॉस्टल है, वो चारों तरफ हॉस्टल है, और भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथकली का सब, तो सुबह से शाम, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स सीखते हैं अपना, तो वो साउंड, वो म्यूजिक, वो चीज, जो वातावरण, वो हमको सुनाई देता था। हमें ऐसी ही परवरिश मिली हुई, मेरा होश उस म्यूजिकल माहौल में हुआ। और पिताजी के पास कथा के वहीं पे भारतीय कला केंद्र में क्लास होती थी, तो कभी स्टूडेंट आ रहे हैं तो कभी संडे के संडे मेरे बड़े भैया, मेरी कविता दीदी और बड़े भाई जयकिशन महाराज, तो दोनों को सिखाते थे। तो हम तो इतने छोटे थे, हम नहीं सीखते थे, लेकिन उनके पास खड़े और बैठ के तबला पिताजी संडे के संडे केवल वो बजाते थे और हम देखते थे कि कैसे सिखा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कहूँगी कि हाँ, मेरे पिता गुरु हैं, लेकिन मेरे इंस्पिरेशन मेरी दीदी रही है, मेरी बड़ी दीदी कविता दीदी, क्योंकि फीमेल है ऑब्वियसली, और मैं फीमेल फीमेल बहन बहन, अब वो मुझसे 10 साल बड़ी है। तो पिताजी जब भी सिखाते थे अंग का, मूवमेंट का, एक्सप्रेशन कैसे करना है, कैसे चाव भाव है, तो वो क्या करते थे, वो मैं, मेरी दीदी हमारे सिंह के पास छोटा सा शीशा हुआ करता था, और वहाँ पे खड़े होकर वो मूवमेंट, हस्तक को कैसे सही कर रहे हैं, कि कैसे पिताजी ने सिखाया, कैसी उंगलियाँ रखी है, कैसे भाव, कैसे चेहरा बनाया, कैसे निगाह दी है, ये मैं उनको देखती थी कैसे कर रहे हैं। तो फिर मैं भी डाइनिंग टेबल से कुर्सी एक खींचा कर मैं सिंह के पास लाती थी, और मैं खड़ी हो जाती थी क्योंकि ऊंचा था शीशी, तो मैं खड़े होकर फिर मैं भी वही करती थी जो मेरी दीदी करती थी। बच्चे चीटिंग तो करते थे, अच्छा, क्योंकि एलपी का मॉल था, इतना रिकॉर्डर नहीं था, तो विलायत खान साहब जी का और अली अकबर खान साहब जी का वो एलपी लगाकर घुंघरू बांधकर कमरा बंद करके मेरे भाई और मेरी बहन दोनों रियाज कर, तो मैं बाहर से देखती थी और मुझे अंदर एंट्री नहीं मिलती थी क्योंकि छोटा सा कमरा था ये सब। तो इस तरीके से मैंने देखा इनको करते हुए, पिताजी के पास टाइम नहीं होता था संडे, मतलब अगर मिल जाए, और स्कूल का टाइम, हम लोग तो सुबह स्कूल जाते हैं और रात को जब 8-9 बजे सो जाते हैं, पिताजी 10-11 बजे 12 बजे आ रहे हैं काम इतना, तो उनकी मुलाकात, हमारी मुलाकात बहुत कम होती थी, लेकिन संडे के संडे हमारी मुलाकात होती थी कि आधे दिन के लिए उनके साथ हमारा टाइम निकलता। उसके बाद वहाँ पे भाटिया कला केंद्र में उनको हमारे, मतलब मेरे जन्म से पहले उनको काफ़ी इन्होंने बैले वगैरह किया था, कुमार शंभो वगैरह ये सब आती है, जापानी कोई स्टोरी था मुझे याद नहीं आ रहा, वो जापानी कोई स्टोरी थी कुमार शंभो और ये शानिया वध जो बाजिद अली शाह जी के पास, तो उन्होंने मेरे पैदा से पहले से था, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद भी कई बार बैले का डिमांड हुआ। तो छोटा छोटा आर्टिस्ट चाहिए, कृष्णायन है, ये सब रुकमती बास बहादुर है, कुमार शंभू, तो उसमें छोटा आर्टिस्ट चाहिए। तो मेरा जो शुरुआत है, मेरे भाई जो बहन है सबको ये प्रमोशन दिया गया कि चलो घर में बच्चे नाचते हैं तो उनको भी ले लिया, तो उनको थोड़ा सा मन भी लग जाएगा और नाच भी लेंगे ऐसे। तो इसी बहाने कई चीजें हम लोग सीख भी लेते। तो ग्वाल वाल में मैं भी थी 4-5 साल की उम्र में, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई तो कृष्ण छोटा माखन चोरी, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो कालिया दमन, रुकमती बास बहादुर में छोटी रुकमती, उस पर नया बैले बना तो मैं काम आई, कुमार शंभो था ही था तो उनका लगे हाथ में भी कार्तिक किया। तो इस तरीके से धीरे धीरे हुआ, हमको तो लगा कि सारी दुनिया म्यूजिकल ही है।
अच्छा,
हमारा क्योंकि कथक भारतीय कला केंद्र, कथक केंद्र, भागलपुर हाउस, फिक्की, श्रीराम सेंटर, ये सारा म्यूजिकल और NSD नेशनल स्कूल ड्रामा, ये सब उसी सर्कल में। तो हम तो अकेले कहीं घूमने छोटे ही थे, तो हमें लगता कि पूरी दुनिया म्यूजिकल है, यही खुशबू है,
यही दुनिया है,
खुशबू है, यही सांस है हमारी, ये सब है। लेकिन हमें नहीं पता था कि इसकी ये भारतीय कला के ये गोला, वो जो इंडिया गेट का गोला काट के करके वहाँ पे एकदम सन्नाटा मिलेगा, हमें नहीं मालूम था, हम बहुत दुखी थे। लेकिन ये जो टाइम था, मैंने पिताजी को जो मेहनत, जो डेडिकेशन उनके स्टूडेंट्स में मिलता था, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कोई जरूरत नहीं है, काम जरूरी है, रोटेशन चल रही है, रात के 12-1 बजे तक चल रहा है, हाँ प्रॉप्स बनाना भी है, मैं कॉस्ट्यूम भी है, सब भाग दौड़ करे, हाथ बंद करके सारे स्टूडेंट खड़े। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने शुरू से ही, मैंने एक पिता तो कम, मैंने गुरु ज्यादा देखा, क्योंकि इनके स्टूडेंट्स खड़े होते थे हाथ बांध कर, और उसके बाद ये जो भी काम कहते थे, सेवा बोलते थे, तो वो सब लोग करते थे, तो मुझे लगा कि ऐसे ही करते हैं पिताजी, मैं तो मुझे तो ऐसे ही माहौल देखा। तो आज तक मैंने कभी जिद नहीं किया किसी भी चीज का, और उनको कभी भी मैंने उनको फोर्स नहीं किया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं, जो कहा हमने किया। तो मैं उनको गुरु ज्यादा पिता कम देखने लगी। तो ये चीजें मेरे को आता ही नहीं, क्योंकि पिता के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, तो मुझे आज तक नहीं आया।
आपने हमेशा उनको गुरु के रूप में ही देखा। अच्छा, अभी आपने बातों बातों में बताया कि आपकी गुरु असल में आपकी प्रेरणा स्रोत आपकी बहन थी, जो आपसे 10 साल बड़ी थी
जी।
तो आप लोग ऐसे कितने भाई बहन हैं?
हम 5 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी दीदी कविता मिश्रा, साजन मिश्रा जो बहुत बड़े प्रख्यात वोकलिस्ट है क्लासिकल, उनकी वाइफ है वो, जयकिशन महाराज। फिर उसके बाद अनीता कुलकर्णी, वो उन्होंने कुलकर्णी ने शादी किया क्योंकि कॉलेज के टाइम पे दोस्ती है, और आर्टिस्ट क्योंकि वो था, इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट से उन्होंने किया। तो मेरे दीदी स्कल्प्टर रहे हैं और मेरे जीजा एब्स्ट्रैक्ट पेंटर।
अच्छा,
तो एक दूसरा कला, मतलब एक गाना संगीत भी है और आर्ट भी है इसमें। उसके बाद फिर मैं हूँ और मेरे बाद एक दीपक महाराज, बहुत खूबसूरत डांसर है।
अच्छा, तो अब जब महाराज जी नहीं है तो उसके बाद जो आप लोगों का घराना है, चालिका बिन घराना लखनऊ का जो माना जाता है
जी,
और जिसकी आप लोग 8वीं पीढ़ी है, तो आपकी 2 बहनें तो जो है दूसरी फील्ड में चली गई, शादी हो गई, तो आप जो 3 भाई बहन हैं, अब इस साम्राज्य को कैसे संभाल रहे हैं और जो ये विरासत है इसको आगे ले जाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं?
मैं पहले एक छोटा सा स्टोरी पीछे जाती हूँ, आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ कभी भी लड़कियाँ डांस नहीं करती हैं, हमारे खानदान में लड़कियों को इजाजत नहीं था।
अच्छा,
पर्देदारी थी, और हाँ घर के अंदर जो भी ठुमरी भजन चल रहा है या जो सिखा रहे हैं या सीख रहे, घर के अंदर ही अपने आपस में ही हो जा रहा है, सिर्फ या गाने भजन। मेरी दादी को भी याद, मेरी दादी से मेरे पिताजी ने काफी ठुमरी भजन लिया जो मेरे दादाजी का।
लेकिन जब आप बोल रही हैं महिलाओं को इजाजत नहीं थी, तो दादी भी लेकिन आपकी जो है वो संगीत से जुड़ी हुई थी, इस बात से हमको लगता है
एकदम, क्योंकि माहौल जिस माहौल में है उन्होंने तो सुना, वो देखा, लेकिन वो निकल नहीं सकते थे। बाहर आप खड़े होकर क्लास में या स्टूडेंट के साथ या स्टेज पे डांस के परफॉर्मेंस का कभी इजाजत नहीं थी। आप अपने घर के अंदर अपने भाई बहनों के साथ, दादी काकी चाची के साथ चलता था।
मतलब सब घर की महिलाएं भी इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी लोगों के सामने कभी भी नहीं आई।
ना, मेरी
ये क्या शायद लखनऊ का घराना है, लखनऊ की नवाबी संस्कृति का असर रहा हो शायद।
क्योंकि जो घर की गुरु घर के लड़के में बच्चों को सिर्फ लड़के को इजाजत थी क्योंकि परंपरा कहते चलती है, तो तीन तीन भाइयों का परंपरा। इवन मेरी माँ भी बहुत अच्छा गाती थी। और आपको हम बता दें कि गिरिजा देवी जी जो बहुत अच्छी खूबसूरत वोकलिस्ट रही है, वो क्लासिकल, उनके जो गुरु हैं मेरे नाना,
अच्छा,
श्री चंद्र मिश्रा, मेरी माँ के पिताजी उनके गुरु रहे, तो वो भी हमारे घर की शागिरद रही।
अच्छा।
तो मेरी माँ के तरफ से वो थी और हम ऑब्वियसली यही सब है, तो ये कनेक्शन इस तरह से रहा। तो पर्देधारी तब भी था, हमारी मम्मी ने भी थोड़ा गाना चाहती थी, ढोलक भी बजाना, बहुत बढ़िया ढोलक बजाती थी, और शादी ब्याह में काफी बुलाया जाता था कि करो बजाओ, तब बहुत कमाल का बजाती थी वो, और गाती भी बहुत खूबसूरत थी, और इनको थोड़ा बहुत सितार भी आता था बजाना। लेकिन ऑब्वियसली वही बात है कि पर्देधारी हमारे यूपी में ये सब काफी है। तो इस तरीके से, लेकिन अभी भी करना भी बहुत चाहते थे हमारे, जैसे हमारी कजन मेरे शंभू महाराज जी के जो बेटी है, हम लोग उनको मुन्नी बुआ बोलते हैं, वो भी डांस करती है, वो भी अच्छा करती थी, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिला। वो भी सिखाती थी, सिखाया घर में सिखाया, लेकिन बाहर स्टेज पे कहीं नहीं, तो उनका भी मन ऐसा रह गया। मेरी बड़ी दीदी अच्छा डांस करती थी, वो जो अंग लगा के खड़ी होती थी, जो एक्सप्रेशन वो देती थी, मतलब महाराज जी अगर कह दें कि मैं आज नहीं नाचूंगा और मेरी दीदी खड़ी हो जाती तो कोई फर्क नहीं देते थे, क्योंकि हूबहू चेहरा काफी, और जो हस्तक और जो चाल उनका मिजाज जो बनता था एकदम हूबहू महाराज जी के लिए। तो इस तरीके से लोग कहते थे कि ऐसा लग रहा है कि महाराज जी खड़े, चेहरा वगैरह सब मिलता। तो इसी तरह से, तो ये जब ही कृष्णायन और कुमार शंभु, ये जिसमें मेरी दीदी ने भी रोल किया, कृष्ण भी बनी, कार्तिक भी बनी थी, ये सब। उसके बाद इनकी शादी हो गई। अब शादी कर लिया तो अब घर में अपनी जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, और क्योंकि इजाजत तो आपको बताया कि पर्देदारी, तो
मतलब सोचिए आप लोग आठवीं पीढ़ी के लोग हैं और आठ पीढ़ियों तक कभी भी आपके खानदान में महिलाओं को इजाजत नहीं थी।
नहीं,
तो आपसे शुरुआत हुई क्या?
नहीं, मैं वही कहना चाह रही थी कि माँ पिताजी ने जो हम लोग को बैले में जो इजाजत दिया, ये अगर कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी बहुत खूबसूरत मिली या गलती हुई, मुझे नहीं पता, ये नहीं कह सकती मैं कि उनसे गलती हुई है या उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन ये था कि मन रखा उन्होंने, चलो बेटा आप लोग कर लो, लेकिन ऐसे नहीं था कि आप सोलोइस्ट बनेंगे, आप काम करेंगे, ऐसा नहीं था। तो शादी करके बच्चे को जाना है, दे अपना घर बार देखना है, तो ये चीजें थी। तो फिर मेरी दीदी ने शादी किया तो अपना जिम्मेदारी, बच्चे, घर का सब शौकिया, घर के अंदर ही वो टुकड़े टिहानी लगा लेती है, लेकिन स्टेज पे ऐसा नहीं किया। तो मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचा कि इतनी खूबसूरत डांसर वो और इतना कमाल की वो, तो मैंने उनसे इंस्पायर होकर मैंने सीखा, तो कल को मेरा भी ऐसे ही होगा। और मेरे मुझसे बड़ी दीदी ने थोड़ा बहुत वो भी करती थी, जो कल्चर है अनीता कुलकर्णी, उन्होंने भी कॉलेज में डांस किया, स्कूल में डांस किया, हमारे साथ भी किया, ये सब कृष्णायन में भी किया। तो लेकिन उसके बाद उनको भी पता था कि कल इनका भी खत्म होगा, तो उन्होंने स्कल्पचर बनना पसंद स्कल्पचर करने के। मैंने एक दिन क्या हुआ, हमारे स्कूल जहाँ मैं भारतीय विद्या भवन से पढ़ी हूँ, मेरे हम पांचों भाई बहन वहीं से पढ़े हुए, तो वहाँ पे NCC आर्मी की छोटा मोटा ये ट्रेनिंग दी जाती, तो मुझे वो भी बहुत पसंद था, NCC और मार्च पास्ट है, दिल्ली पास है, और जो सिखाया जाता था, तो मैं इसे भी बहुत इंस्पायर थी। एक साइड जैसे मेरे दिमाग में कहीं साइड में ये था कि अगर कुछ नहीं तो ये, तो मैंने एक दिन पिताजी से, मेरे 17-18 साल की उम्र में मैंने पूछा कि बाबू ये बताओ कि क्या मैं डांस कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि वो बहुत मैं भगवान से हाथ जोड़ के भीख मांगती थी,
अच्छा
भगवान बाबू मुझे इस प्रोग्राम में ले ले, मुझे नहीं छोड़े, मुझे ले ले, मतलब ऐसे मैंने विनती की है। ले लेते तो बहुत खुश होती थी मुझे,
तो भगवान से विनती करती थी, अपने पिताजी से नहीं बोलती थी।
नहीं, मुझे डर लगता था कि पता नहीं क्या बोल देंगे, वो मेरा दिल ना तोड़ दे ऐसा। तो भगवान से भीख मांगती थी कि भगवान प्लीज कर दीजिए कर दीजिए, तो हो जाता था ईश्वर जो भी है। तो कई बार ऐसा हुआ कि और टूर पे नहीं लेके जाते थे, नहीं लेके जाती थी कथक केंद्र का प्रोडक्शन है, स्टूडेंट जाएंगे हम नहीं जाएंगे, तो हम तो कथक केंद्र में नहीं थे, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता था, हम मन बहुत दुखी होता था। तो एक दिन मेरे को ना थोड़ी हिम्मत बनाकर मैं गई पिताजी के पास, मैंने कहा कि बाबू ये बताओ कि मैं डांस मेरा कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। हाँ तो कह रही कर तो रही हो तुम पहले में और आइटम वगैरह में कर तो रही हो, लेकिन ना मुझे डांसर बनना है, मुझे करना है, ऐसे बताइए, नहीं तो बताइए फिर मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती
हूँ। अच्छा,
बहुत मेरा एक मेरे अंदर वो एक कहीं एक हिस्सा है, थोड़ा स्ट्रांग हूँ, थोड़ी सी डिसिप्लिन को कायम रखने की कोशिश ऐसा थोड़ी सी हूँ, तो लेकिन वो दोनों चीज मेरी साथ में चलती है। तो पिताजी हंस के बोले तो तुम सुई से तो डरती हो, हाँ वो कोई लाके राइफल खड़ा हो जाएगा तो तब तुम्हारी क्या हालत होगी।
अच्छा,
मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, टॉर्चर से बेटर है एक गोली मारो चले गए, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ये बताइए कि क्या मैं आर्मी ज्वाइन करूँ या डांस करती रहूंगी। वो हंस के बात टल गई, वो बात ही टल गई और नहीं ना इधर की नहीं ना उधर।
अच्छा,
लेकिन मेरी कोशिश थी कि ठीक है अब जैसा भी चल रहा है मैं अपने वो डांस जो भी, क्योंकि कभी कभी ग्रुप में लेके जाते थे जैसे ICCR या कहीं भी लेके जाते थे पिताजी, तो वर्कशॉप होता था, तो मुझे जो शाश्वती दीदी जो उनकी बहुत पुरानी डिसाइपल है शाश्वती दीदी, मेरे पैदा होने से पहले से है वो।
अच्छा,
अभी तक है और वो सेवा पूरी तरीके से डांस के लिए है डिवोटी थी, तो मुझे लेके जाते थे तो मैं प्रैक्टिस थोड़ा हेल्प करती थी ग्रुप में, अलग अलग मैं प्रैक्टिस कराती थी। तो वहाँ पे ये करा के तब धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया ठीक से और चीज़ें को पक्का करने की कोशिश की, और अंगों में भी मैंने बहुत ध्यान दिया पिताजी का कि किस तरीके से सिखा रहे, उनको देखा समझा है, यही मेरे को आज डांस करने का ताकत दिया है। सीखना और देखकर समझना में बहुत फर्क है,
सही बात है।
रियाज जरूरी है लेकिन समझ के करना, कि उसको जहन में लेके आना, अंदर आपके अंदर सांस के साथ निकलना, उस बात को निकालना इज वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत रेयर लोग जानते हैं कि डांस में सिर्फ हस्तक और पैर चलाना ही डांस जानते हैं, लेकिन अंदर की एक एक नर्व आपके साथ इन्वॉल्व होती है।
फिर आपका आर्मी जाने का सपना कब टूटा और कथक का सपना कब सच हुआ?
वही यही बात ये हुई थी कि मेरे पिताजी ने तो हंस के टाला, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि बोलने की कि मेरे को क्या स्टेप लेना है, मैं ना इधर की रह रही हूँ ना उधर की रह रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो पिताजी फिर मुझे कभी फिर ये धीरे धीरे लेके जाने लगे कि चलो और प्रोग्राम है पहले, उसकी लालच में मुझे मैं करती रही हूँ। तो मैं स्कूल में भी जब पढ़ती थी, मैं स्कूल भी पढ़ी, मैं सच कहूँ तो मेरी पढ़ाई मेरे सिर्फ इस प्रोग्राम और डांस के चक्कर में मैंने स्कूल किया है क्योंकि कथा केंद्र मेरा स्कूल और कथा केंद्र दूर नहीं है, मैं अपनी क्लास से बस कैसे तरीके से क्लास ख़त्म हो और मेरे बैल बजे बैग लेके भागूंगी बाहर, और वहाँ पे एक चपरासी आएगा वो कथा केंद्र से मुझे साइकिल में बैठा कर ले के जाएगा, और वहाँ मेरी माँ कपड़ा भेजी होंगी खाना भेजा होगा, मैं वहाँ पे ड्रेस चेंज करके खाना खाकर होमवर्क करके और तब तक बैले की प्रैक्टिस चल रही है उस बीच में जाके मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ये लालच मैंने इस लालच से मैंने स्कूल किया, स्कूल में सच कहूँ तो पढ़ाई में बहुत बेकार थी, बहुत ही बस रोते धोते इस लालच में मैंने नाचा। तो मैं लेकिन ये था कि डांस ऐसे ही करते गए, उम्र बढ़ती गई, कुछ ऐसे जितने सा रह गया ना आर्मी, लेकिन आर्मी अगला जन्म अगर हुआ तो मैं पक्का मैं आर्मी ज्वाइन करूँगी।
सचिन जी अब हम अपने पुराने प्रश्न पे आते हैं जो मैंने पहले पूछा था। अब जो आप लोग तीन भाई बहन हैं, एक बहन तो स्कल्पचर में चली गई है, घर गृहस्थी में लग गई और हल्का फुल्का डांस कर लेती हैं, तो आप तीन भाई बहन अब इस साम्राज्य को कैसे संभाल रहे हैं और अपने इस घराने की जो विरासत आप लोगों के पास है, बहुत सारे उनके डिसाइपल्स होंगे महाराज जी के, वो लोग संभाल रहे होंगे, लेकिन रक्त संबंध आप तीन लोगों का है, आप लोग ने क्या प्लानिंग की है और आगे क्या कर रहे हैं?
जो पिताजी थे तो हम तो उनके पूरे पैरों में थे, और उनकी हर एक इजाजत जो भी वो कहते थे हम उनको फॉलो करते थे। जो भी है हमारी सेवा हम कर ही रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं पिताजी की या कला की। तो मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया का अपना इंस्टीट्यूशन है, मेरे बिरजू महाराज परंपरा, इन्होंने पिताजी के नाम से उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला। और बहुत खूबसूरत, वो भी कोरियोग्राफर, म्यूजिक करना, डांसर, बहुत खूबसूरत और कमाल के वो भी है, मतलब पिताजी की काफ़ी फॉलो करते हैं। मेरा छोटा भाई जो है उसकी डांस कमाल है, उनकी उपज वगैरह ये सब चल रहा है। तो ये भी अपना एक क्लास और कलाश्रम में हम हैं, पिताजी के संस्था कलाश्रम है, मैं 23 साल से जुड़ी हुई हूँ, मैं वहाँ पे सिखा रही हूँ और मेरे भाई भी सिखा ही रहे। तो हम लोग जुड़े हुए किसी तरीके से और इस सेवा में है, सिखा रहे। और बाकी मेरा एक, मैंने भी अपना एक संस्था बनाया, क्योंकि मैं पुणे में कुछ समय के लिए गई थी और वहाँ पे भी कुछ बच्चे सीखना चाह रहे थे, तो मैंने वहाँ सिखाना शुरू किया। अब मैं एक्चुअली चली गई थी कि वहाँ पे रहने के लिए कि मैं, लेकिन मुझे बुला लिया गया दिल्ली वापस, क्योंकि यहाँ पे कलाश्रम की क्लास थोड़ी सी डगमगा आया था मेरे जो स्टूडेंट्स लेवल के। तो फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा भी ऐसे तुम एडजस्ट करो, आना जाना करो जैसे करना है। तो भाई हमने बड़ी मुश्किल हुई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक डेढ़ महीने में मैं 10 दिन के लिए जाती हूँ वहाँ, कुछ कुछ सिखा कर रोज। फिर वहाँ एक टीचर है उसको मैं हैंड ओवर करके आती हूँ, मेरा तुम उसको पॉलिश करो, फिर मैं आऊँगी फिर सिखाऊंगी। तो इस तरीके से हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं कलाश्रम वहाँ ना नाम लेके मैं पिताजी का नाम का दूसरा जो नाम है मैं वो इस्तेमाल करना चाहती, इससे पहले कोई और चोरी करे। तो मैंने उसको चुराया, तो ब्रिज श्याम जो ठुंडी भजन करते हैं उसमें ये इस्तेमाल करते हैं, कविताएं है, जो भी ये नाम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने नाम दिया ब्रिज श्याम कला कुंज। तो ब्रिज के श्याम, जो ब्रिज के श्याम है उनकी कलाओं के हम लोग कुंज है।
बहुत अच्छा,
ये मेरी फीलिंग है। और मैंने इसी तरीके से वो बनाया जो कि एफिलेटेड है कलाश्रम से, एग्जाम भी हम उन्हीं के थ्रू करवाते हैं, लेकिन नाम मैंने अलग कर दिया। तो मेरे पास मेरे पिताजी का नाम, तो ये है। तो इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं सेवा। मेरा छोटा भाई भी एक संस्था सोच रहा है कि कुछ अपनी तरीके से बना। तो कोशिश यही कि महाराज जी की ही चीज़ को हम नाम का इस्तेमाल और उसी में रह के काम करें। तो कलाश्रम तो हम हैं, तो कलाश्रम तो महाराज जी का तो चल ही रहा है, उसमें तो जब तक जीवन है हम करेंगे, करते
रहे। तो आप लोग जो नई संस्थाएं खोल रहे हैं वो भी तो उसी से एफिलिएटेड है, और देश भर में जो कलाकार हैं, जो उनके शिष्य हैं, जैसे हमारे बिलासपुर में रितेश शर्मा जी,
एकदम
ऐसे ही बहुत सारे शहरों में बहुत सारे उनके डिसाइपल्स हैं, जो उस कला को, उस स्वरूप को और उस घराने की शिक्षा को धीरे धीरे फैला ही रहे हैं। और बहुत सारे यंग बच्चे जो हैं इस कला को आज भी, शास्त्रीय नृत्य की कला इस विधा को अपना रहे हैं और अगली पीढ़ी 9वीं 10वीं पीढ़ी तक ले जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ममता दीदी, ये तो आपके लाइफ की बातें हैं, आप स्टेज पे फिर आपने फिर सोलो परफॉर्मेंस करती।
देखिए मुझे 35 ईयर्स लगा मेरे पिताजी को सिर्फ ये अजमाने के लिए कि वो मुझे किसी तरह से इजाज़त दे कि मैं डांसर हूँ, मेरे अंदर भी वो खून दौड़ता है, मैं करना चाहती हूँ, बड़ी मेहनत की है। पहली बात तो मैं सच में कहूँ कि पिताजी के बड़े स्टूडेंट्स और बड़े डिवोटिस, मैं जैसे जो डेडिकेशन के साथ जिस तरह का काम करे, वाकई रितेश भाई है और हमारे बिलासपुर में इसी तरह से, हम मुंबई में रेणु शर्मा भी और भी स्टूडेंट्स वहाँ भी हैं, और कलकत्ता में भी परमिता और लूना इस तरह के हैं, अमेरिका में भी है।
अच्छा
हाँ, अनुराग है और अनुराधा है और काफ़ी लोग स्टूडेंट्स हैं, किरण चौहान, ये सब काफ़ी शिकागो वगैरह में है, मीना पुलिस में है, रीता मुस्तफी और कहाँ सा नाम लूँ, दुर्गा आर्या जर्मनी, तो ये बहुत ही खूबसूरत बाबू के बहुत पुरानी डिसाइपल में से और काफ़ी अच्छा डांस करती हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे, मैं नाम कितना ले लूँ, बहुत जगह में, काफ़ी जगह पे, मतलब चाइना में भी है, जापान में भी है, बिंदु जापान में, मसाको जापान की है, तो ये सब है। तो सब लोग लगे हुए हैं सेवा में, शिक्षा ले भी रहे हैं।
हाँ,
आज मैं अपने गुरु को खो चुकी हूँ, इस चीज़ का बहुत तकलीफ है हमको, लेकिन जो उन्होंने सिखाया है, जो चीज़ हमें तालीम में दी है, जो चीज़ संस्कार है हमको, जो संभाल के चलने की तरीका, जो रास्ता बताया है कि बेटा तेज शॉर्टकट मारने में आदमी गिरता जरूर है, इसके बाद वो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, धीरे धीरे। जैसे ये कछुआ और खरगोश की कहानी मेरे जीवन का सबसे बेस्ट स्टोरी में से एक है, ये, और मैं ये जानती हूँ कि इससे बड़ा सबक हर इंसान को लेना भी चाहिए, और मैं लेती भी हूँ। तेजी की दौड़ में तो आदमी थक जाता है, संभाल के चलने वाला रास्ता जो होता है वो आदमी बिना थके उस मुकाम पे पहुंच जाता है और सक्सेस होता है। तो धैर्यता बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से हम लोग काम करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे चल रहे हैं तेजी का। मैं जहाँ भी वर्कशॉप करती हूँ, जैसे कर ही रही हूँ आजकल, तो मेरा काम होता है कि पहले अंग को ठीक करना। मुझे हर तरीके के स्टूडेंट अलग अलग मिलते हैं, उनके अंगों में वो मूड जो रस है, जिस रस की कमी है, वो रस को मेरे को डालना है। सुंदरता जो अंदर की खूबसूरती है, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं निकालेंगे, वो डांस कितना भी हाथ हिलाएंगे, लेकिन वो आँख और चेहरे के थ्रू जो चलता है, उसकी जो ब्यूटी, उसी कनेक्शन है, वो ही कंप्लीट करेगा। नहीं तो सिर्फ हाथ चला और आपका चेहरा डेड है, ये इनकम्प्लीट है, आप उसका आनंद ही नहीं ले सकते। तो रस की, चाहे गायन हो, चाहे वाद्य हो, चाहे डांस हो, चाहे भाव कुछ भी हो, रस मीनिंग फीलिंग नहीं है। अब सितारा था डा 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 बजा तो दे, अब उसी को थोड़ा सा गमक दे दे डा 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 डा, तो ये फीलिंग जो आ रहा है, जो रस ढालने की कोशिश कर रहा है, ये कभी तो आदमी में मिलेगा ना।
जी बिल्कुल। तो फिर आप अपने पिताजी की गंदाबंद शागिर्द कब बनी और कब आपने पहली प्रस्तुति दी?
ये हाँ, ये चीज है। प्रस्तुति तो हम कर ही रहे थे, क्योंकि इस दौरान से मेरी थोड़ी, पिताजी समझ रहे थे कि मेरी कितनी
कोशिश
अंदर चक चक चल रहा है, तकलीफ में हूँ मैं, हमेशा मैं बात नहीं करती थी, लेकिन मोटिव कुछ नहीं थी, तो मेरे एक रिएक्शन समझ जाते थे। तो बहुत तकलीफ, कभी कभी बहुत, जैसे मन ऐसे हो गया, नहीं जाती थी उनके सामने, नहीं जाती थी, ऐसा था। तो ये समझते थे कि मेरे अंदर है, बस क्योंकि मैं लड़की जाती हूँ, हमारे घर में लड़कियाँ नहीं करती हैं, पर्देदारी कहानी, तो सब देखा कि अब थोड़ा सा दुनिया भी पढ़े लिखे घर के अच्छे अच्छे लोग आकर सीखना शुरू किया है। हाँ, शोभना नारायण जैसी IAS ऑफिसर ने भी किया, शाश्वती दीदी हैं, तो कितने लोग डॉक्टर सारे कितने आके सीखे, तो फिर हम क्यों नहीं, घर के लोग क्यों नहीं, जो कि अंदर खून रोता है करने के लिए। तो बड़ी ही मेहनत की है मैंने। 2008 में मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ था 29 जनवरी, और उसके बाद मेरे पिता ने ये कहा कि ये तुम्हारी माँ को बोलना चाहिए कि मेरे बच्चों को गंडा कब बांधोगी। तो उनको एक पुराना ढंग, जैसे उनकी पिताजी की घर के मामले में पुरानी सोच रखते थे, तो क्योंकि घर की औरतें, माँ दादी बोलती है कि अरे तुम क्यों नहीं बांध रहे हो, बच्चे को बांधो, तो वो भी चाहते थे कि मेरी माँ कहती तो मेरे अपने बच्चों को गंडा बांधते। तो ये फीलिंग है अपनी अलग अलग सुंदरता है ये सब चीज़ें। तो बहरहाल ये, क्योंकि मेरे कान में है ये आवाज़, ये बात तो मुझे समझ में है। लेकिन मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला जब गुरु पूजा हुआ, और मुझसे 2 दिन पहले कहा गया, मेरे बड़े भैया को प्यार से चीकू बोलते हैं, चीकू भैया, और दीपक और ममता को गंडा बांधा जाएगा। मैं यूं शॉक, मैं आँख फट गई, मैंने कहा मैं कुछ यही सुन रही हूँ क्या, मैंने ये क्या हो रहा है, मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है, मैंने कहा पहले कन्फर्म करो। कई बार ही कन्फर्म किया गया कि नहीं तुमको बांधा जाएगा, गंडा बांधू बांधेंगे। मैं, हम लोग, हम तीनों भाई बहन गए चैट इंडिया में जाकर, ऑरेंज कलर का एक सम्मान सेम कपड़ा कुर्ता पैजामा वाइट दुपट्टा स्टोल हमने लिया, सबके लिए ड्रेस लिया, हम लोगों का बड़े धूमधाम से हमको पिताजी ने गंडा बांधा, इतने प्यार से बांधा कि मैं सोच नहीं सकती इतना बड़ा मैंने अपना संघर्ष और इतना बड़ा मेरी फाइट जो अंदर मेरी यूं था, मैं जीत गई। और बड़ी कृपा ईश्वर की, पिताजी ने एक्सेप्ट कर लिया मैं कर सकती।
क्या आपकी भावनाएं हमको अभी भी दिखाई दे रही हैं, आपकी सुनाई दे रही हैं आपकी आवाज़ में, कि आप मतलब आपके भाइयों को भी तब तक गंडा नहीं बांधा था, और उनके साथ उन्होंने पहली बार आपकी 8-9 पीढ़ियों में किसी महिला को और अपने घर की बेटी को गंडा बांधा। ये सचमुच आपके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही, और उन्होंने भी 7-9 8 पीढ़ियों के बाद इतनी हिम्मत जुटा करके ये काम किया, उनके लिए भी उन्होंने लोगों को आगे के लोगों के लिए भी दिशा निर्धारित की, बहुत बड़ी चीज है ममता दीदी। हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हम आपके सामने इस समय बैठे हैं।
बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। सच में आज ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं आज बहुत गर्व से मैं कह रही हूँ कि आज मेरी नीज लोगों को वो कष्ट नहीं हुआ जो कष्ट हमने तक, जो पेन हमने उतने टाइम के लिए मैंने सहा। आज मेरी नीज को बचपन से ही मैंने इनको ट्रेनिंग शुरू कर दिया था स्कूल में, नर्सिंग के जी में, अर्धनारेश्वर महाराज जी की कॉम्पिटिशन, वर्णत छवि, ये सब बच्चों को सिखा के स्कूल में फंक्शन करने के लिए कि बेटा घर की चीज कर, मैंने उनको सिखाया। और उसके बाद जब देखा कि बच्चों के हाथ हस्तक बढ़िया हो रहे, पढ़न अच्छी हो गई, ताल अच्छे हो रहे छोटे छोटे, मेरे पिताजी ने सिखाना शुरू कर दिया। और सब दोनों बहनों को खूब सिखाया। लास्ट मोमेंट तक, अंत तक मेरे पिताजी जब तक सांस, जब तक लास्ट उनके सामने सांस गई है मेरी नीज के सामने, उनको लास्ट मोमेंट तक उनके उनको सिखाया, हर एक चीज सिखाई। और वो उनकी जिगर के टुकड़े थे दोनों हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको। और मुझे बहुत खुशी है, जैसे एक रास्ता मुझे मैंने बनाकर, बस मैंने रास्ता रख दिया कि मेरे बच्चे, हमारी लड़की और लड़का कोई फर्क नहीं है, जिनके अंदर गुण है वही लेके जाना उचित है, जब गुण है तो क्यों नहीं लेके जाना। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पिताजी ने उन को गले लगाकर सिखाया है, खूब सिखाया।
चलिए, बहुत आपने रास्ता दिखा दिया, आगे की पीढ़ी के लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया, तो उसके लिए तो आपको धन्यवाद है। आपने अपने पिता की सोच बदलने को मजबूर कर दिया है ना। चलिए, अब कुछ कुछ जैसे आपने कहा पढ़न दिए, वो कुछ ऐसी चीजें भी हमको इस अपनी इन बातचीत में सुना करके बताइए। तो कुछ या कुछ पढ़न गीत कोई चीजें, मतलब
अच्छा पहले तो माफी मांगती हूँ, ये ओरिजिनल मेरी आवाज है नहीं, जुकाम जुकाम बहुत है, खांसियाँ बहुत है, छींक बोल रही हूँ बहुत, इसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन पढ़न ही सुना सकती हूँ। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत पिताजी ने ना भाव तिहैया बनाई थी काफी, जैसे चिड़िया है और बत्तख की है, और जैसे शेर और गाय, शेर और हिरण का, इस तरह का, जैसे धा पिताजी बहुत बढ़िया करते थे,
एक
और है दा दिन दा चिड़िया का, दा दिन दा दा बत्तख का, हाँ दिन दा पिताजी बहुत खूबसूरत गर्दन बत्तख की, जब चाल चलते ये ऐसे ऐसे करके बहुत ही खूबसूरत, दा दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दिन दा जो बत्तख के बच्चे वो रास्ते में यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं, और ताकि बच्चों को वो बत्तख की जो माँ है उसको यहाँ पकड़ कर चिड़ाई गुस्से में, चलो धीमे ताकि एक साइड चलो धीमे ताकि धीमे ताकि धीमे ताकि, इस तरह से इतनी सारी भाव है उन्होंने, चिड़िया का वो चिड़िया आती है खाना खाती है फिर उड़ जाती है, इस तरह की कई भी है। और एक बॉल का भी है, जिस तरह से हाइड एंड सी है इन्होंने, हॉकी का भी बहुत है, एक तक एक बॉल, इन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत बनाया था, बॉल का था, जैसे बॉल ले गए एक ताकि एक दो में बॉल को छुपाया, फिर एक दो तीन दूसरा बंदा उसको लेने की कोशिश कर रहा, वो खेल रहा है, तो इसको भाव जब करने पे आएगा तभी समझ में आएगा। जैसे एक ताकि एक दो ताकि एक दो तीन ताकि एक दो तीन चार ताकि एक दो तीन चार एक दो तीन चार, उसको घुमा रहा है बॉल और दूसरा बंदा खेल पकड़ने की कोशिश कर रहा, एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच ताकि पांच ताकि पांच ताकि दा, और पांच ताकि पांच में बॉल उड़ रहा है अभी ताकि दा में पकड़ रहा है। इसी तरह से और भी है, जैसे हम लोग जैसे लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन करते हैं या बच्चों के साथ करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों के साथ भाव के साथ खेलने में ताकि उनका इंटरेस्ट सम का कैच करने का टाइमिंग वो समझ में आए, तो जो ताधा फेंका बॉल और एक दो तीन चार पांच में जो बॉल उड़ रहा है उड़ के ये बच्चों के साथ बड़ा खूबसूरत खेल स्टेज से उनके साथ हो सकता है। तो धा जो है एक दो तीन चार पांच का टाइमिंग बच्चों को दिया जाता है और धा में बॉल पकड़ना, तो ये चीज बड़ा एंजॉय करते हैं।
हाँ बिल्कुल, कथक का बिल्कुल अलग ही स्वरूप वो किया, नहीं तो लोगों के दिमाग में जो आम आदमी होता है जो कथक को उसे ऐसा दिल से नहीं जुड़ा होता है उसको लगता है वही एक प्रस्ताव ही थे नीरस तरह से कर रहे हैं, इतनी वैरायटी इतना सब कुछ उन्होंने परिवर्तित करके लोगों के सामने बच्चों को सिखाया।
जी 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 हाँ, पिताजी को हर एक चीज में भाव दिखता है, चाहे वो बॉल या टाइमिंग है, क्योंकि सब तो नंबर और टाइमिंग है, और जैसे पेड़ है फूल है और इस तरह से पानी का भाव है, जैसे एक तिहाई हाथी का कि जो शब्द है भा दगिनता दगिनधा दगिनता इसमें पानी सूंड उठाया भी नीचे गया, इसमें हाथी का चाल है धा धगिन ता धगिन धा धगिन ता धगिन ता धगिन धा धगिन ता धगिन ता धगिन धा धगिन ता उसमें जो चाल पैर का है वो तिहाई में धा धगिन ता और बॉडी का वजन और हाथी का जो कान का ये और सूंड, तो उसका जो उसकी जो सुंदरता है मतलब जो बोल को भी वैसी दर्शा देते हैं।
बहुत अच्छा लगा आपने इतने सारी पढ़ंत भी हमको सुनाए। अब चलते चलते हमारी एक बात और कि आप आने जो नई पीढ़ी जो सीख रही है कथक और उन लोगों के लिए कोई संदेश आप क्या देना चाहेंगे?
देखिए ऐसा है कि अब नई पीढ़ी पुरानी चीज को और पुराने लोगों का आया किस तरीके से सिखाते थे, किस तरीके से लोग पागलों के जैसे रहते थे, है ना, कितना परीक्षाएं गुरु लेता था, वो उसका टेस्ट वो आज के दौर में कोई नहीं जानता। आजकल फास्ट फूड है, आजकल बर्गर आसानी से मिल जाता है, आजकल जो स्विगी का जमाना है, भाई आपने फोन किया तो वक्त पे आ गया बेचारा, बनाने का टाइम नहीं और क्या चीज़ कितने क्वांटिटी में बनाना है ये भी नहीं मालूम, खाने को मिल गया बस यही बहुत है, तो चीज़ बना बनाया मिल गया खा गया, तो चीज़ ये है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं घर में, मैं अपनी बात करूँगी, मैं अब दूसरे की बात ही नहीं करना है, मैं एक और इंसान की बात करना चाहूँगी जो मेरे शंभू महाराज जी की बात करूँगी, जो उनके यहाँ एक शागिर्द बांग्लादेश से आया उनसे सीखना चाहता था, ये बहुत पुरानी बात होगी और ये, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ गुरु का और उस व शिष्य का किस तरीके से सीखने का और सिखाने का तरीका था, वो किस तरीके से करते थे, कितना एग्जाम लेते थे गुरु, ठीक है, तो वो आके क्योंकि बांग्लादेश से आया तो उनको बाहर वो कहा कि ठीक है बाहर चबूतरा था और शेर था तो वे ठीक है बैठो बाहर सीखना चाहते रहे। वो पूरी सेवा कराया उन्होंने, घर का सौदा लाना, पूरा मालिश करना, नहलाना, रात को सो रहे तो खुद की करना, सेवा पूरी है, झाड़ू पोछा करना ये करे, लेकिन डांस नहीं सिखा रहे थे। ये बात चली काफी महीनों, एक महीना नहीं दो महीने नहीं काफी महीनों चला। और वो आदमी तस से मस जिद में रहा कि नहीं मेरे को सीखना है, तेजी से सीखना है तो जाना ही नहीं है। वो वैसे ही वहीं पर खाना मिल जाता था जैसे कि था जो भी है। जब उनको लगा काफी समय के बाद, जब उनकी हमारी दादी जो शमी महाराज जी की से कहा कि अब तो बेचारा उसको क्यों कर पा रहे, उसको सिखा दो अब क्या चल रहा है, ये कह रहे कि नहीं यही देखना चाहता था कि ये कितना कीन है, कितना ही भक्ति है डांस के लिए, कि जो सीखने के लिए कितने दिन वो तड़पता रहा सीखने के लिए, सारा काम किया तब जाकर उनको वो तालीम मिला। तो मतलब मेरे ख्याल से 6 महीने काफी महीने हो गए थे, इतना मुझे नहीं खिला लेकिन ये 1-2 महीने की बात नहीं, काफी महीने ऐसे। इसी तरह से मेरे पिता ने भी मेरी परीक्षा ही लिया, ये मैं समझ गई लड़कों को मिलना ही मिलना है, लड़कों को तो मिलना है ये जगह, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा 2-3 लड़कों के ही चल रहा है, लेकिन यहाँ 2 भाइयों में मैं तो मैं अपनी बात जरूर करूँगा। उन्होंने मेरी भी परीक्षा ली है, जोर से ली है, और मेरा धैर्यता और मेरी पेशेंस का बहुत उन्होंने देखा कि एक लड़की डांसर पहली, जिसको भी करना हो, जो पहली बार करेगा उसको तो वो थोड़ा सरपट तो ले नहीं पड़ेगा, वो आसानी से मिलने वाली नहीं है। मैं भी समझती हूँ इस बात को, और उनकी हर तरीके से, क्योंकि उनको हर एक पुरानी चीज़ों से निकल कर नई चीज़ को अपनाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, वो वही मैं समझती हूँ। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं कि अगर मैं लड़की पहनूँ, मैं भी करना चाहती हूँ, मेरे अंदर वो खून दौड़ता है, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं पीछे नहीं हट सकती, मैंने जब आगे गई हूँ तो आगे ही जाऊँगी, मैंने कहा एक कदम पीछे गई तो मैं वापस चली जाऊँगी कि ना रहो यहीं पे रहो, टस से मस नहीं, यहाँ से कटना तो रगड़ती रही हूँ मैं तो, जैसे भी किया वो तो किया। लेकिन उन्होंने परीक्षा जो की है तो आज ईश्वर की कृपा है कि आज लोग जानते हैं कि मैं भी महाराज जी के घर में शायद एक लड़की है, नाचती है, थोड़ा सिखा लेती है। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं कहूँगी, ये मिसाल मुझे बहुत जिंदगी भर भी मुझे बहुत पसंद आया। फर्स्ट टाइम मैं मुंबई गई थी महाराज जी के साथ, उस वक्त हम 75 पीपल थे एक कोरियोग्राफी में, और मैं उस दिन सुबह पहुंची थी, और एक शाश्वती दीदी ने चाहा कि एक मेड के ऊपर कोई एक था, एक बंदिश थी, तो कह रही कि ममता इसको हमें करना है। मैंने कहा दीदी शाम को प्रोग्राम है और आप अभी बता रहे हो, मैं कैसे याद करूँगी गाना वगैरह और मैं कितना क्या है, तो कह रही कि नहीं तुम कर लो। ये कॉन्फिडेंस, ये जो दीदी ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं कर लूँगी, ये उनको था हमेशा शुरू से। तो मैंने कहा कि अच्छा दीदी पहले आप करो, वो गाती है तो स्टेज पे, और आप पहले करो, आप कैसे करोगे। तो उन्होंने करके दिखाया, मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, तो हम दोनों को ही करना था, पहले उनको करना था मुझे करना था। फिर मैंने भी अभी कुछ और दिमाग में भाव चल रहा था, मेकअप कर रही थी, मैंने उस लेडी को बोला कि प्लीज़ एक बार और गाओ ताकि मैं उस बंदिश समझ में आ जाए। अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे क्या करूँगी क्या करूँगी, तो मैंने एक रूपरेखा तैयार कर ली अपने दिमाग में। नाम अनाउंसमेंट हो गया 75 पीपल का, एक साथ नाम ले लिया गया, कहाँ कौन ममता महाराज और कौन दीपक महाराज, कौन शाश्वती दीदी, कौन क्या है, किसका हम लोग 75 पीपल नाम। स्टेज पे डांस किया, बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था कथक यात्रा करके, खूब अच्छा ड्रामेटिक टाइप में था। स्टेज प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं स्टेज से बाहर हम लोग निकल गए नमस्ते वस्ते करके, बाहर एक ग्रीन रूम के तरफ जा रही थी, पीछे से एक आवाज़ आती है एक लेडी का कि एक्सक्यूज मी ममता जी। तो मैं पीछे मुड़ी, मैंने कहा कि जी आप, मैं जानती नहीं थी और उनको मेरा नाम पता, तो कह रही कि आप ममता महाराज हैं। तो मैंने कहा कि जी हाँ, तो कह रहे कहा कि देखा था नहीं, मैंने कहा ना कि ये ममता महाराज है, तो मैं समझी कि अच्छा इनका नाम तो मैंने सुना था महाराज जी से फ़ोन में बात करती है, लेकिन इनको मेरा चेहरा नहीं मालूम कि मैं ममता हूँ। मैंने कहा 75 पीपल के बीच में आपने कैसे जाना कि मैं ममता महाराज हूँ, कैसे, कह रहे कि कैसे नहीं जानते, आपका डांस करने का ढंग ही अलग है, आप महाराज जी का कुछ रूप दिखता है मुझे। मैंने कहा भगवान, मैंने कहा इतना बड़ा बात कह दिया आपने, मैंने कहा मैं सोच भी नहीं सकती कि आपने इतने लोगों के बीच में मुझे पहचान लिया, सभी तो भाव कर रहे हैं, सभी नाच रहे, एक ही चीज कर रहे हैं, लेकिन उनमें से ममता महाराज आपने ढूंढा। तब तो मेरी कहीं तक मैं महाराज जी को छू पा रही हूँ। बस एक छोटी सी मिसाल ये, वो हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहता है। क्या करूँ, थैंक टू गॉड, और बहुत मेरी भगवान ने बड़ी मेरा साथ दिया। मैं तो भगवान को भी शुक्रिया करती हूँ। मेरी माँ ने भी मेरे को तड़पते और दुख ही देखते हुए देखी, बेचारी पड़े दुख को कहती जाके बाप से क्यों नहीं बोलती। मैंने कहा कि नहीं बोलूंगी, उनको क्यों नहीं समझ में आता है, और पिताजी अपने काम में ज्यादा बिजी है, सब ये कर, लेकिन देखते हैं, अजमाते जरूर थे, बोलते कुछ नहीं थे।
चलिए, आपसे इतनी लंबी बातचीत करके ममता जी बहुत अच्छा लगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, मेरे उस्ताद से हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते।
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।